हबकुक अध्याय एक। अब हम भविष्यद्वक्ता हबकुक की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। भविष्यद्वक्ता हबकुक के जीवन के विषय में हमें अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि के विषय में हमें कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। भविष्यद्वक्ता हबकुक की पुस्तक से हमें मात्र इतना संकेत मिलता है कि वो लेवियों के परिवार से था। पुस्तक का अंतिम अध्याय जो एक भजन है अर्थात गीत के रूप में लिखा गया है और इससे उन्होंने मुख्य गायक को जो तार वाद के साथ गाते हैं। साधारणतः लेवियों का ये कार्य था। मंदिर में अनेक लेवी हुआ करते थे। उनमें से कुछ संगीत सेवा के लिए नियुक्त होते थे। संभवतः भविष्यद्वक्ता हबकुक मंदिर के लेवियों में से एक था। इस पुस्तक में भविष्यद्वक्ता हबकुक की भविष्यवाणी के काल का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा अन्य भविष्यद्वक्ताओं के अभिलेखों के आरंभ में किया जाता रहा है। उदाहरण के तौर पर योशया और योहाकीम के राज के काल में भविष्यद्वक्ता हबकुक ने अपनी भविष्यवाणी के काल का उल्लेख नहीं किया है। उनकी भविष्यवाणी और पुस्तक के अध्ययन से हम ये जान सकते हैं कि इस लेख का संबंध इसराइल की आत्मिक दशा और बैबिलोन के आक्रमण से है। अनेक विचारक भविष्यद्वक्ता हबकुक की भविष्यवाणी का काल योशिया के राज्यकाल को मानते हैं। मनुष्य जैसे दुष्ट राजा के शासनकाल के पश्चात योशिया के राज्यकाल में यहूदा क्षेत्र में आत्मिक स्थिति में सुधार हुए। योशिया ने परमेश्वर के व्यवस्था विधान को ढूंढा, फसा पर्व दोबारा प्रतिष्ठित किया आदि। ये योशिया के शासनकाल में आई आत्मिक जागृति थी। पहले अध्याय में भविष्यद्वक्ता हबकुक ने इसराइल की आत्मिक स्थिति के विषय की है, जो संभवतः योशिया के शासनकाल के अंत या यहोयाकीन के शासन का आरंभ था। उस समय यहूदा की राष्ट्रीय स्थिति अत्यंत बिगड़ चुकी थी और बाबिलोन उन पर अधिकार करने पर था। भविष्यद्वक्ता हबकुक की भविष्यवाणी बैबिलोन का आगामी आक्रमण के विषय में थी, जिसे परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने और उन्हें दंड देने के लिए सोटे की तरह प्रयोग करने पर था। इसलिए भविष्यद्वक्ता हबकुक अपना अभिलेख प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हबकुक अध्याय एक पद एक, भारी वचन जिसको हबकुक नबी ने दर्शन में पाया। आरंभ में भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर को पुकारा है। परमेश्वर के साथ उनका संबंध मधुर और निकटतम था। भविष्यद्वक्ता के नाम अर्थात शब्द हबकुक का अर्थ है वो जो आलिंगन करे। हबकुक ने परमेश्वर का आलिंगन किया था और परमेश्वर ने उनका, इसलिए उन्होंने अपना लेख प्रार्थना से आरंभ किया है। हबकुक अध्याय एक पद दो से लेकर चार तक। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। परमेश्वर से शिकायत, क्योंकि देश की स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। ऐसा लगता है कि दुष्टता एक ज्वार भाटा जिसे परमेश्वर हटा नहीं रहे। भविष्यद् वक्ता कहते हैं, परमेश्वर कब तक मैं इन विषयों के लिए कुहार लगाता रहूंगा, आप सुनते ही नहीं, उत्तर भी नहीं देते। प्रभु, देश की स्थिति भयंकर रूप से बिगड़ती जा रही है, नैतिक अनाचार बढ़ रहा है, दुष्टता का ज्वार भाटा उमड़ रहा है और पूरा देश विनाश की कगार की ओर तेजी से जा रहा है। आप इसके लिए कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। हमने विनती की, हम रोए, किंतु लगता है कि दुष्टता और दुष्ट प्रबल हो रहे हैं। उचित न्याय अब नहीं रहा। एक देश के नैतिक रूप का प्रभाव उसकी न्याय प्रणाली में दिखाई देता है। व्यवस्था विधान अर्थहीन हो जाए तो उचित न्याय कैसे होगा? अपने मध्य हुई घटनाओं के विषयों में सोचकर मुझे न्याय प्रणाली के विषय में चिंता होती है। कुछ समय पूर्व एक व्यक्ति ने जाने माने एक व्यक्ति और उसके दो पुत्रों की हत्या कर दी। उस दुर्घटना के विषय में हम भली भांति जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पूर्व इटली में युवक ने पोप की हत्या करने का प्रयास किया, उसकी अदालत में पेशी हुई और अब वो दंड भोग रहा है। जाने माने व्यक्ति और उनके पुत्रों के हत्यारे को अब तक कोई दंड नहीं दिया गया। न्याय प्रणाली में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसका अर्थ ही नहीं है। कुछ समय पूर्व मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि एक घर में 4.5 करोड़ रुपए के मूल्य की कोकीन बरामद की गई। वहां कोकीन के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ मिला। अपराधी पकड़े गए, किंतु ठोस सबूत ना होने के कारण उन्हें दंड नहीं दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया और अब वे स्वतंत्र घूम रहे हैं, नशीले पदार्थ खरीद रहे हैं और अपने धंधे में फिर से लग गए हैं। जी हां, न्याय प्रणाली में कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण कुख्यात अपराधी अपने अपराध स्वीकार करने पर भी छोड़ दिए जाते हैं। उन्हें उनके अपराध के प्रति चेतावनी नहीं दी गई, उन्हें दिया गया। उदाहरण के तौर पर, दो जन सह अपराधी हो, वे अपना अपराध स्वीकार भी कर ले, परंतु वे एक ही वाक्य एक दूसरे के लिए कहते हैं, इसने अपराध किया है। अर्थात एक कहता है कि इसने अपराध किया है, दूसरा कहता है कि अपराध इसने किया है। अधिकारी किसी के विरुद्ध निर्णय नहीं कर पाते और वे दोनों को जाने देते हैं। ऐसा ही उन अपराधियों के साथ हुआ जिनका उल्लेख हमने थोड़ी देर पहले किया। कुछ तो गड़बड़ है न्याय प्रणाली में। लोगों के लिए व्यवस्था अर्थहीन हो गई है, उचित न्याय अब नहीं मिलता। ये देश की शिथिल नैतिकता का रूप है। शरीर जब इतना बीमार हो जाए कि आप स्वयं को स्वच्छ न रख सके तो शरीर शीघ्र ही नाश हो जाएगा। यदि हमारी न्याय प्रणाली अर्थहीन कर दी जाए कि हम अपने समाज को उसके आंतरिक विष से मुक्त न कर पाए तो यह निश्चय है कि समाज अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकेगा। दुष्ट लोग युक्त लोगों को घेरे रहते हैं। लगता है कि अधिकतर लोग सहज विचारों को स्वीकार करते हैं और जो नैतिकता, युक्तता और निर्मल निर्वाह के लिए साहस दर्शाते हैं उन्हें रूढ़िवादी अथवा ऐसे ही दूसरे नामों से संबोधित करते हैं। भविष्यद्वक्ता हबकुक ने इन सारी बातों को देखा तो उन्होंने प्रभु को पुकारा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर इन सब के प्रतिशोध में कुछ भी नहीं कर रहे थे। देश की स्थिति बिगड़ते ही जा रही थी। कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। हबकुक विचलित है और परमेश्वर से कहते हैं, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। इस प्रकार की स्थिति का अनुभव मैंने स्वयं किया, संभवतः आपने भी किया हो। हमारे चारों ओर अश्लीलता पूरे जोर पर है। रेडियो, टीवी, फिल्म सभी में कामुकता, उत्तेजक विषयों अर्थात अश्लील भावों का बोल बाला है। इन कार्यक्रमों के रचयिताओं को इसमें अपनी सफलता दिखाई देती है और उनके श्रोता तथा दर्शकों की विशाल भीड़ उनके साथ है। इन सब कुछ में कभी भी कोई कमी नहीं हुई है, ये सब बढ़ता ही जा रहा है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इससे अधिक मैं और देखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं होता। ये भ्रष्ट प्रणाली बिगड़ती ही जा रही है और आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हबकुक ऊंचे स्वर में बोल उठे, हे यहोवा, मैं कब तक आपकी दुहाई देता रहूंगा और आप ना सुनेंगे? मैं कब तक आपके सम्मुख अत्याचार अत्याचार चिल्लाता रहूंगा और आप ना सुनेंगे? तब परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, हबकुक अध्याय 1:5, अन्य जातियों की ओर चित लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वो तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। भविष्यद्वक्ता का कहना था, प्रभु मुझे और कुछ ना दिखाइए, क्योंकि सब कुछ बड़ी तेजी से बिगड़ता जा रहा है, परंतु इसके विषय में आप कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं तुम्हारे ही समय में ऐसा काम करने पर हूं, यदि वो तुमको बताया जाए तो तुम विश्वास ना करोगे। तब भविष्यद्वक्ता ने ऐसा कुछ कहा, प्रभु बताइए मुझे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हबकुक अध्याय 1:6-11, देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं, वे क्रूर उतावली करने वाली जाति है जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडरों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं, हाँ वे दूर से चले आते हैं, और आहेर पर झपटने वाले उकाब की नाई झपटा मारते हैं। वे सबके सब उपद्रव करने के लिए आते हैं, सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़ चले जाते हैं और बंधुओं को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वो ठट्टों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु की नाई चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। प्रभु ने कहा, मैं कार्य कर रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं वो ये है कि मैं कसदी राष्ट्र को एकत्र कर रहा हूं और वे अपनी गतिमान सेना के साथ आएंगे। वो इस देश की चढ़ाई में आएंगे और इसे जीत लेंगे और यहां के लोगों के घरों को नष्ट कर देंगे। यहां बेबीलोन द्वारा यहूदा पर एक भीषण आक्रमण तथा उस विजय की पूर्व घोषणा सुनाई देती है, लेकिन वो आगे कहते हैं, जब वे विजय प्राप्त कर लेंगे तो वे एक गलती करेंगे। ये सोचकर कि यहूदा पर विजय हमें हमारे ईश्वर के कारण प्राप्त हुई है जो इसराइल के ईश्वर से महान है। जब परमेश्वर ने अपनी योजना हबकुक को परिचित कराया कि वो एक दुष्ट राष्ट्र बेबीलोन को अपने लोगों की पराजय के लिए प्रयोग करेंगे, ये सच है कि हबकुक को विश्वास नहीं हुआ। परमेश्वर ने पहले ही कहा था, मैं ऐसा काम करने पर हूं, यदि वो तुमको बताया जाए तो तुम उसका विश्वास ना करोगे। भविष्यद्वक्ता हबकुक ने परमेश्वर से कहा कि उनकी कार्यविधि उनकी समझ में नहीं आ रही है, और भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर से कहा, हबकुक अध्याय 1:12, क्या तू अनादि काल से नहीं है? क्या आपका अस्तित्व सदा से नहीं है? हबकुक अध्याय 1:12, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, इस कारण हम लोग नहीं मरने के, अर्थात एक राष्ट्र के रूप में हम नहीं मरेंगे। हबकुक अध्याय 1:12-13, हे यहोवा, तूने उनके न्याय करने के लिए ठहराया है, हे चट्टान, तूने उलाना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, और उत्पात करे देखकर चुप नहीं रह सकता। बड़े रोचक पद है ये, आपकी आंखें ऐसी शुद्ध है कि आप बुराई को देख ही नहीं सकते, और आप दुष्टता को देखकर चुप नहीं रह सकते। मसीह जगत में एक विशेष रविवार को खजूर रविवार के रूप में, अर्थात मसीह यीशु को यरूशलेम नगर में विजय प्रवेश के रूप में मनाया जाता है। इस घटना में परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा पूरी हुई जो परमेश्वर ने दानियल और जकरिया भविष्यद् वक्ताओं के द्वारा मसीह के आगमन के विषय में की थी। जकरिया अध्याय 9:9, तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। दानियल भविष्यद्वक्ता ने कहा, दानियल अध्याय 9:26, जब अभिषिक्त आएगा वो काटा जाएगा। यरूशलेम नगर में मसीह यीशु के विजय प्रवेश के पश्चात शासकों ने उनका तिरस्कार किया। धार्मिक नेताओं की मिली भगत थी कि उन्हें क्रूस पर लटकाया जाए। यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हुए गेतसमनी वाटिका में उनके दुख को स्मरण करते हैं। यीशु ने पिता से 3 बार प्रार्थना की कि पीड़ा के उस प्याले को जिसे वो पीने पर थे उसे वो हटा ले। उनका पसीना लहू की बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। क्रूस के विषय अपनी वेदना पिता के सम्मुख रखते हुए उन्होंने कहा था, मत्ती अध्याय 26:39, पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसे आप चाहते हैं वैसा ही हो। मसीह की प्रार्थना के विषय विचार करते हुए जब हम क्रूस की ओर दृष्टि करते हैं तो वहां से ये स्वर सुनाई देता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। तभी हमें गेतसमनी वाटिका में की गई प्रार्थना ध्यान आता है। भविष्यद्वक्ता यशया यीशु मसीह के दुखों तथा मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की थी, यशया अध्याय 53:5-6, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मसीह यीशु जब क्रूस पर हमारे स्थान पर दुख उठा रहे थे, पापों के कारण जो न्याय हमें भोगना था उन्होंने भोगा। संसार की संपूर्ण दुष्टता का बोझ उन्हीं पर लाद दिया गया था। मानव इतिहास में इससे अधिक दुष्टता, घृणित कार्य जो मनुष्य ने किए उस समय यीशु मसीह पर लादे हुए थे। भविष्यद्वक्ता हबकुक परमेश्वर से कहते हैं, आप दुष्टता को देख ही नहीं सकते। इसलिए जब यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाए हुए थे, उन्हें पिता से अलग कर दिया गया। इस अलगाव को यीशु मसीह सहन नहीं कर पाए, इसलिए चिल्ला उठे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमें यहां ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना अपार प्रेम प्रकट करने के लिए अपने पुत्र को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि यीशु पर हमारा पाप लदा हुआ था। उन्होंने पुत्र को अकेला छोड़ दिया कि हमें सदा के लिए छोड़ना ना पड़े। जब यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप अपने ऊपर ले लिए, हमारे स्थान पर पीड़ा भोगी और न्याय स्वीकार किया, तो इस सब में परमेश्वर ने कलवरी पर अपने रहस्यमय तथा अगाध प्रेम को प्रकट किया। जब भी हम क्रूस की कथा को याद करते हैं तो मन करता है कि अपने पैरों से जूते उतार दे, क्योंकि ऐसा लगता है मानो हम पवित्र स्थान पर खड़े हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना विपुल है पतित मानव के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। यीशु मसीह भजन 22 का उल्लेख कर रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे छोड़ दिया। इस भजन में आगे लिखा है, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, आप मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहते हैं, मेरा उद्धार कहाँ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु आप उत्तर नहीं देते, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। भविष्यद्वक्ता हबकुक परमेश्वर की पवित्रता के विषय में कहते हैं, आपकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि आप बुराई को देख ही नहीं सकते और दुष्टता को देखकर चुप नहीं रह सकते, और आप तो पवित्र हैं, आप जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हैं। इस प्रकार पाप का दंड और परिणाम परमेश्वर से अलगाव है, जिसे पुत्र ने जो निष्पाप था अनुभव किया, परंतु परमेश्वर ने हम सबों के पापों का बोझ उसी पर लाद दिया, ताकि उसके द्वारा हम युक्त ठहराए जाए। एक व्यक्ति इतने सुंदर वरदान को कैसे अस्वीकार कर सकता है। वो हमारे पापों को ले लेता है और हमें अपनी युक्तता प्रदान करता है। ये अनुभव कितना अद्भुत हो जाता है। यीशु हम जैसे बना ताकि यीशु जैसे हो जाएं। अतः परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता की घोषणा है, उनकी निर्मलता तथा उनकी पवित्रता। ये सब कुछ हमें एक रोचक बिंदु पर लाकर खड़ा करता है। अनेक बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जब हम परमेश्वर से अपने पाप और दोषों की क्षमा मांगते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें वास करता है? तुम अपने नहीं हो, तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है, इसलिए अपने शरीरों को और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यदि हम अपने शरीरों को अनैतिकता के लिए प्रयोग करते हैं और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो वास्तव में हम परमेश्वर से कहते हैं, क्षमा करें या मेरे साथ निभा लीजिए और मेरे पापों में सहभागी हो जाएं। परंतु परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध है कि दुष्टता को देख ही नहीं सकती। परमेश्वर दुष्टता को देखकर चुप नहीं रह सकते। यदि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और संसार के सारे पाप उसी पर लाद दिए, तो हमारा ये सोचना मूर्खता है कि हम बुराई में परमेश्वर को अपने साथ सम्मिलित कर सकते हैं। वचन में लिखा है, यदि मनुष्य कहे वो ज्योति में है और फिर अंधकार में चले, तो वो झूठा है और उसमें कुछ भी सत्य नहीं। धोखा मत खाओ। अनेक लोग धोखे में हैं। वे सोचते हैं वे परमेश्वर और पाप को एक साथ मिला सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है। दूसरा कोरिंथी अध्याय 6:17-18। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। परमेश्वर कहते हैं, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। भविष्यद्वक्ता हबको की एक समस्या है। प्रभु, आपकी आंखें इतनी शुद्ध है कि आप बुराई को देख ही नहीं सकते और दुष्टता को देखकर चुप नहीं रह सकते। हबकुक अध्याय 1:13। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? भविष्यत वक्ता के कहने का तात्पर्य है, हां प्रभु परमेश्वर, हम तो बुरे हैं, मैं ये जानता हूं, लेकिन वे तो कसदी लोग हमसे भी अधिक बुरे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा न्याय करने के लिए हमसे भी अधिक भ्रष्ट राष्ट्र का प्रयोग कर रहे हैं। बेबिलोन के विषय में चर्चा करते हुए हबकुक ने कहा, हबकुक अध्याय 1:14-17, तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वो उन सब मनुष्यों को बांसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता है और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वो आनंदित और मगन है, इसलिए वो अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपना महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वो जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रोकेगा? परमेश्वर, मुझे समझ नहीं आता कि आप बेबिलोन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। वे गैर यहूदी और मूर्ति पूजक हैं। वे मछुआरों के समान हैं। वे जब मछलियां पकड़ लेते हैं, अपने जालों को बलि चढ़ाते हैं, धूप जलाते और गलत ईश्वरों की उपासना करते हैं। वे परमेश्वर की आराधना नहीं करते। परमेश्वर उनको समृद्धि क्यों देते हैं? उनको विजय क्यों दिलाते हैं? वे इतना विध्वंस क्यों करने पाए? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर दुष्टों को आशीष क्यों देते और उन्हें समृद्ध क्यों करते हैं?